दो मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, है ना, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ब्रदर ब्रजमोहन भाई जी हमारे बीच में है। हम तालियों से उनका स्वागत करते हैं। ही इज द एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आपने सीए की डिग्री पास की है 1956 में, और आप लगभग 17 साल तक फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन है, वहां पर बहुत ही ऊंचे पद पर डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के पद पर रहते हुए सर्विस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और 1973 में रिटायर होके वहां पे वीआरएस लेके पूरी लाइफ अपनी इस ब्रह्मा कुमारी इसमें डेडिकेटेड किया है। आप हमारे एक्टिव मेंबर हैं, कोर कमिटी, जो ह्यूमन वैल्यूज एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज गवर्नमेंट का जो कोर कमिटी है उसके भी आप मेंबर हैं। आपने गॉडलीवुड सुना होगा, हॉलीवुड सुना होगा, बॉलीवुड सुना होगा, पर जॉलीवुड सुना है कभी? जॉलीवुड ओआरसी में एक स्टूडियो बनाया गया है, वहां पे एक शॉर्ट फिल्में बनी है, तो भाई साहब के अंडर में ही वो जॉलीवुड चलता है। आप हमारे फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो ब्रह्मा कुमारीज के हेड हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है ब्रह्मा कुमारीज के, मेंबर हैं अपेक्स बॉडी एंड मैनेजिंग कमिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के, सेक्रेटरी है ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी जो सिस्टर कंसर्न है ब्रह्मा कुमारीज की, सेक्रेटरी है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली के, चेयरपर्सन है पॉलिटिशियन विंग के, डायरेक्टर इन चार्ज दिल्ली एनसीआर जोन, जो हमारा वहां पे एनसीआर जोन में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, वहां के आप इंचार्ज हैं। एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर के आप प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए पहले बहनों से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का बुके और बेस से स्वागत करें। आप सब भी तालियों से स्वागत करें। हमारे डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं, तो उस बिजी डॉक्टर को भी कैसे इजी बनाया जाए, आज आप उनके मुख से सुनेंगे। इतने सालों का अनुभव है भाई साहब का, तो हम अपनी लाइफ में बिजी होते हुए भी कैसे इजी रहें, ये भाई साहब आपको समझाएंगे। और मैं समझता हूँ सभी कंसंट्रेट होकर सुने और जो बताएं अपने अंदर धारण करके जाएं, तो हम हमारी लाइफ भी इजी हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
ओम शांति। आपको बिजी होना अच्छा लगता है या इजी होना अच्छा लगता है? इजी होना अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप सब तो डॉक्टर हैं, ये बताइए कि बिना खाना खाए एक व्यक्ति कितना समय जिंदा रह सकता है? कोई भी बताइए, बड़ा आसान सवाल है। हाँ जी, 7 days। क्यों जी, आप सबको 7 days मंजूर है? हैं? 21 days, ये तो 3 गुना हो गया। हाँ अच्छा, मैं पानी पे आ रहा हूँ। बिना, चलो इसको छोड़ो खाने को, बिना पानी पिए, जिसमें कोका कोला स्क्वैश हर चीज है, कितने देर जिंदा रह सकता? वो कह रहे 1 day, वो कह रहे 3 days, हर चीज में 3 गुना का फर्क आ रहा है। मौसम पे डिपेंड करता है, पीछे वाले जिंदा रह रहे, सॉरी पीछे वाले बताइए कि आप बिना पानी पिए कितना समय जिंदा रह सकते हैं? हाथ तो उठाया, 3 days। अच्छा जी, ठीक है, अब अगला सवाल क्या होगा? हाँ, बिना हवा के आप कितना समय जिंदा रह सकते हैं? टू मिनट्स। कोई प्राणायाम वगैरह करता हो फिर? है जी, अच्छा, अब बहुत सवाल पूछना ठीक नहीं। लास्ट क्वेश्चन, आत्मा के बगैर कितना समय जिंदा रह सकते हैं? हैं? इमीडिएटली। किसी ने कहा कि जब मुंह नहीं बोलता तो आंखें बोलती हैं, ठीक है, जब आंखें नहीं बोलती तो धड़कन बोलती है, बोलती है, जब धड़कन भी नहीं बोलती तो सांस बोलती है। अब जब सांस भी नहीं बोलती तो डॉक्टर बोलता है, ही इज नो मोर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि अगर आत्मा निकल गई तो छुट्टी, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय किस चीज? हम कहते हैं खाना भी प्रिजर्व करके रख लो, पानी भर के रख लो, ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आत्मा निकल गई और हम ये सारा कुछ बॉडी के लिए करते हैं, और अगर आत्मा निकल जाए तो बॉडी घर में रख लो, 8 घंटे बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? हैं? स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीज जो आत्मा की वजह से ही चलती फिरती नजर आ रही है, जिंदा नजर आ रही है, उसको हम कितना ध्यान देते? और आज प्रश्न यही है हमारा, लाइट कैसे रहे? तो अब आप बताइए, लाइट रहने के लिए फर्स्ट चीज क्या हो गई? अपने आप को क्या माने? बोलिए, अपने आप को क्या माने? शरीर मानोगे तो भारी, आत्मा मानोगे तो हल्का। एक मोटर कार खड़ी है, आप में किस किस के पास कार है? डॉक्टरों के पास तो होती है, जरा हाथ उठाइए, ना हो तो हम कुछ सोचें आपके लिए। अच्छा ठीक है, उस पे डॉक्टर का वो निशान भी लगा होता है। मान लो कि कार खड़ी हो गई, उसका धक्का लगवाने की जरूरत पड़ती है, आजकल तो हर चीज को धक्का लगाया जाता है, आप जानते हैं। शरीर में खाना डाल लो उसको भी धक्का लगाना पड़ता है, कोई नाली बंद हो जाए उसको भी धक्का लग, पिछला पानी अगले पानी को धक्का देता है, दुनिया धक्के से चल रही है। तो कार खड़ी हो गई उसको आपने धक्का लगवाना है तो कितने लोग चाहिए कम से कम? हाँ जी, दो। कौन सी कार है जिसके लिए दो चाहिए? अच्छा, आजकल तो जितनी बड़ी कार उतने बड़े डॉक्टर की फीस, तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, उसको धक्का लगाने के लिए कोई है नहीं, आप अकेले ही हैं, फिर क्या करोगे? खाली उसका इंजन स्टार्ट कर दो, ठीक है? इंजन स्टार्ट करने के बाद एक व्यक्ति भी उसको धक्का लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? जैसे हम में से आत्मा निकल जाए तो चार बंदे उठाते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद कहते हैं कि दूसरा आ जाए, और जब हमारे अंदर आत्मा होती है तो मिल्खा सिंह भी बन जाते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ, कार को हल्का किसने किया? इंजन स्टार्ट हो गया। तो इसलिए आप गौर से देखेंगे कि हल्के होना या भारी होना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। अब मैं गलती से या जरूरत से अपना ब्लड टेस्ट करवा लूं और कोई कह दे जी अरे भाई साहब आप 90 साल के हैं, आपका ब्लड तो सारे माउंट आबू में प्योरेस्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा? मैं, मेरा 36 इंच का सीना हो जाएगा, मैं खुश होकर अरे मेरा ब्लड प्योरेस्ट है, चाल ही बदल जाएगी। और अगर कोई कह दे आपके ब्लड में तो जी जनाब कुछ, तो फिर मेरे पैर भारी हो जाएंगे, हूं मैं वही, फिर मुझे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा सोच का? जो ही माइंड में आया मर गए तो मर गए, उड़ गए तो उड़ गए। अच्छा, आज के जमाने में कोई आपको कहे कि आपका बॉडी वेट दुगना 3 गुना कर दिया जाए तो कौन तैयार होगा आप में से? आपके शरीर का वजन 3 गुना कर दिया जाए कोई तैयार होगा? नहीं, पक्की बात है ना। आपको कह दें कि आपका पैसा 3 गुना कर दिया जाए तो हैं आप तैयार हो जाएंगे? है दोनों वेट, लेकिन ये जरा दिखता है, अकल बड़ी या भैंस, ये दिखता है वो दिखता नहीं है। तो हमने अपने ऊपर वेट ले लिया। आजकल लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो देखते हैं फलानी कंपनी के शेयर खरीद लो, है ना? अच्छा, आप खरीद लेते हैं, आगे तो आपका अपना अप एंड डाउन होता था अपनी वजह से, अब कंपनी की वजह से डाउन होना शुरू हो जाएगा। रोज देखोगे कंपनी अप जा रही है तो आप खुश, कंपनी डाउन जा रही है तो आप, तो क्या हुआ जी? आप सोचिए जरा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके हाथ में है, आप जितने हल्के होना चाहे हो सकते हैं, और जितने भारी होना चाहे हो सकते हैं। 2000 का नोट आजकल सबसे बड़ा है, और कॉइन भी होते हैं। आप जेब में अपना पैसा 2000 के नोट में रखेंगे या कॉइन का थैला भर के चलेंगे, क्या ख्याल है? वो भारी है वो हल्का है, इसलिए हर व्यक्ति हल्का होना चाहता है, लेकिन हल्का होते होते किसी ना किसी जगह जाके वो फंस जाता और भारी हो जाता। भारी होने का एक मुख्य कारण है अटैचमेंट, जिसको कहते हैं अटैचमेंट। जैसे अटैची केस होता ना किसी के साथ, अब अटैचमेंट का मतलब क्या है अब तो जानते हैं। डॉक्टर पेशेंट्स का ऑपरेशन इस तरह करता है जैसे लोग गाजर काटते हैं। अच्छा, डॉक्टर का कोई अपना रिश्तेदार आ जाए, बेटा आ जाए या कोई आ जाए, फिर क्या होता है जी? फिर वो गाजर काटेगा, कहेगा भाई मेरा हाथ कांप जाएगा। आपको पता है कि डॉक्टर था वो सन्यासी बन गया था, फर्क क्या पड़ा? अटैचमेंट। अच्छा, दशरथ जी ने क्यों सुइसाइड कर ली? रामायण में आता ना कि दशरथ जी ने सुइसाइड कर ली, बेचारे ने, किस कारण कर ली? हाँ, वनवास तो राम को हुआ था ना, उसने क्यों कर ली? अटैचमेंट। आपके पास तो रोज आप देखते हैं पेशेंट से ज्यादा तंग आपको पेशेंट के रिश्तेदार करते हैं कि नहीं, ये जी ये करो डॉक्टर साहब। आप कहते हैं मैं कर रहा हूं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्या मतलब हुआ? उनकी अटैचमेंट है ना। एक नर्स अच्छी तरह ध्यान रखती है पेशेंट का, लेकिन अगर मरीज डिस्चार्ज हो जाए तो नर्स लड्डू नहीं बांटती, और अगर मरीज किसी वजह से वो हो जाए तो नर्स रोती नहीं। क्यों? अटैचमेंट नहीं है। इसलिए इस दुनिया में आपने हल्के होना है। तो यूं तो हम कहते हैं जीवन एक यात्रा है, कहते हैं कि नहीं कहते? यात्रा है कि नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए, ये भी सोचने की बात है। हम कहते हैं जीवन यात्रा है, पर हम क्या करते हैं कि मेरा स्टेशन आ जाए तो मैंने नहीं उतरना भाई, है ना? अब यात्रा है तो स्टेशन आएगा, उतरेंगे भी चढ़ेंगे भी नहीं। मैं 100 यत्न करूंगा, मैंने उतरना नहीं, ये भी पता है मुझे उतरना पड़ना है। और शास्त्रों में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, हर व्यक्ति जानता है कि मुझे इसको छोड़ना है, लेकिन अंदर से कोई नहीं समझता। वो समझता सारी दुनिया छोड़ देगी, मैंने नहीं छोड़ना। क्या शानदार चीज है। तो यात्रा तो हम कहते हैं, अब यात्रा में क्या होता है, नया पैसेंजर आता है तो पिछले वाले बड़ा उसको हॉस्टिलिटी से देखते हैं, ये क्यों आ गया भाई, हैं कहां से आ गया? अच्छा, थोड़ी देर बाद उसे एडजस्ट कर लेते हैं, चलो भाई। अगला स्टेशन आता है तो वो भी उनके साथ मिलके नए को कहते हैं ये क्यों आ गया, है ना? और ये भी आप देख लें, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिश्ता नहीं बांधेंगे। तो पैसेंजर बात करते करते रिश्ते तो नहीं बांध देता ना, उसको पता है। बल्कि किसी पैसेंजर का स्टेशन आ रहा तो उसको कहते हैं आ भाई तेरा स्टेशन आ रहा है, तेरा सामान उतरवा दे, तुझे दरवाजे पे खड़ा कर दे। पर जीवन यात्रा में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट। आप ये बताइए कि आपने जब जन्म लिया तो आप डॉक्टर थे? हो सकता है डॉक्टर ने आपको जन्म लेने में मदद की हो। अच्छा, जब आप रिटायर हो जाते हैं आप डॉक्टर रहते हैं? नहीं रहते। तो आजकल हम क्या मानने लगे हैं कि हम जो हमारा प्रोफेशन है हम वही हैं। कितना बड़ा धोखा है। एक सिनेमा का हीरो एक्टर, हीरो एक्टर इसीलिए कहलाता है कि वो कोई भी रोल कर सकता है। आप उसको डॉक्टर बना दो तो असली डॉक्टर से बढ़िया चलेगा। लोग पैसा देखकर उसको देखने जाते हैं कि साहब फलाना एक्टर डॉक्टर बना हुआ है, कैसे चलता है। मरीज बना दो तो असली मरीज से बढ़िया, ठीक है? क्यों? कि एक्टर कभी दिल में समझता है कि मैं असली डॉक्टर हूं, तो मैं तो रोल कर रहा हूं, मैं असली मरीज हूं, मैं तो रोल कर रहा हूं। एक्टर को आप राजा बना दो, डॉक्टर बना दो, पोर्टर कुली बना दो, एक्टर दिल में कभी फील नहीं करता मैं फलाना हूं, वो जानता है कि मैं तो अलग हूँ, मेरा तो बंगला जुहू बीच पर है, मेरा अलग एंटिटी है और ये तो मैं रोल कर रहा हूँ। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं जी? हम भी तो रोल ही कर रहे हैं ना, लेकिन हम उस रोल को ऐसा पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ, कोई कहे एक्टर को अब तेरा रोल पूरा हो गया, अपनी ड्रेस उतार, ये सब टूटी टाटी रख और पुरानी वर्दी पहन, वो खुशी से जाएगा। और कोई मेमोरी लॉस हो जाए कि मैं तो डॉक्टर हूँ तो मेरे क्या कर रहे हो, मैं तो राजा हूँ तुम तो मेरी बादशाही छीन रहे हो, हो गई गड़बड़ अटैचमेंट। इसलिए अब आप और सोचिए, एक्टर को जो एमोल्यूमेंट मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो क्या राजा बनने का ज्यादा, डॉक्टर बनने का उससे कम, और पोर्टर बनने को कुली का फीस मिलता है या एक जैसा मिलता है? क्यों जी, एक जैसा मिलता है। अच्छा, उसकी जो ताली बजती है वो राजा बनने की ज्यादा बज जाती है या वो भी परफॉर्मेंस पे बजती है? क्यों जी? तो अगर एक एक्टर को पैसा भी उतना ही मिलता है, ताली भी उतनी बजती है, डिपेंडिंग अपॉन हिज परफॉर्मेंस, तो हम क्या कर रहे हैं? शादी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए। आप ये ना सोचना ब्रह्मा कुमार होकर शादी का एडवर्टाइजमेंट क्यों बोल रहा है। उसमें क्या लिखा होता है जी? वांटेड, ठीक है। जो आजकल के पेइंग प्रोफेशन है उसका नाम लिखा होगा, आईटी एक्सपर्ट फलाना, डॉक्टर को तो बहुत मानते हैं क्योंकि उसकी कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी, ओवर एम्प्लॉयमेंट बीमारियां बढ़नी बढ़नी है, कितना शानदार पेशा है ना, कोई खतरा ही नहीं। डॉक्टर थक जाएगा, मरीज नहीं थकेंगे, इसलिए ये लिखा होगा। कभी कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख देते हैं, जो मैं हूं। अच्छा, अब क्या होता है, कहीं नहीं लिखा होता वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपने कभी पढ़ा? अब रिश्ता हो रहा है लाइफ लॉन्ग और मांग क्या रहे हैं, सांसारिक चीज, तो नतीजा आप देखते हैं क्या हो रहा है। इसलिए हमें इस चीज से सी थ्रू करना है कि हमें अगर लाइट रहना है तो हमें फिर इधर उधर नहीं देखना, दुनिया को नहीं देखना, कंपेयर नहीं करना, अपनी जिंदगी जीना है। तब आप चूज करके मेरे को हल्का रहने का, मेरे को आसान रहने का क्या तरीका करेंगे? नहीं तो आप एक भी जगह एंटेंगल हो गए। मान लीजिए आजकल की दुनिया में हर जगह एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर से बाहर एक व्यक्ति होता है, वो उस जगह काम करता है, उसका नाम है मिस्टर झा। यहां तो कोई मिस्टर झा नहीं होंगे मेरे ख्याल में, कि मैं ऐसे गुस्ताखी कर दूं कुछ, कोई नहीं है ना मिस्टर झा। अच्छा ठीक, लेकिन वो मिस्टर झा होते हैं और उसका मतलब होता है जे फॉर जेलिसी, एच फॉर हेट्रेड, ए फॉर एनिमोसिटी, कि उसके अंदर ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी। अच्छा जी, अब आप अपने जहां भी आप काम करते हैं, किसी भी वजह से आप किसी से ईर्ष्या कर लें, आप उससे घृणा कर लें, द्वेष पैदा कर लें, तो फिर मजा देखिए कि आपको और जो कुछ भी आप करेंगे वो चीज आपको सारी आपकी खुशी छीन के ले जाएगी। उसको कुछ फायदा हो गया तो आप दुखी, आप चाहेंगे उसको कुछ नुकसान हो जाए तो मैं सुखी, क्योंकि आजकल मनुष्य के अंदर नेगेटिव हैप्पीनेस आ गई है। पड़ोसी के घर में बहुत बढ़िया कार आ जाए तो खाना खाते भी सोचेंगे ये कार कहां से ले आया, इतनी बड़ी कार, इतनी महंगी कार। अच्छा, गोल आया तुमको क्यों भाई? अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए तो खुश हो जाएंगे, अब पता लगा कार कहां से लाया, अब पता लगा कार कहां से लाया। हम भगवान को कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण जितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण जितना धरो। प्रभु जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा अगर मैं दूसरों के अवगुण चित्त धरता तो मैं प्रभु जी होता। प्रभु जी का तो मतलब ही है कि मैं किसी के अवगुण चित्त नहीं धरता, तेरे नहीं धरता, किसी के भी नहीं धरता। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, मैं किसी के अवगुण चित्त नहीं धरता, इसीलिए मैं प्रभु जी हूं। फिर प्रभु जी कहते हैं बेटा अच्छा तू आ ही गया है तो तू भी किसी के अवगुण चित्त ना धरा कर। क्या प्रभु जी ये मुझे मंजूर नहीं है, आप तो धरो ना, मैं सबके धरूंगा। कैसा सौदा है, है? कहते हैं एक व्यक्ति को किसी ने कहा भगवान की अच्छी तरह ध्यान लगा, वो तुझे तीन वरदान दे देंगे। वो बड़ा खुश हो गया कि भाई तीन वरदान दे देंगे। अच्छी तरह उसने ध्यान लगाया तो भगवान तो सबसे खुश हो जाते हैं। आ गए, उनको पता था ये व्यक्ति अंदर से ना कुछ गड़बड़ है, मांग क्या मांगता है। तो उसने कहा आप देंगे? उसने कहा मैं तो भगवान हूं, लेकिन एक बात नोट कर ले, जो तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। उनको पता था ये फंसेगा। अच्छा क्या मांगते हैं आजकल, एक फर्स्ट क्लास फ्लैट दे दो। लो जी उसके सामने एक फ्लैट आ गया, उसका नेम प्लेट भी लगा हुआ है। बड़ा खुश कहता मैं पत्नी को फोन करता हूँ भी फ्लैट मिल गया है। जरा सा उधर देखा तो पड़ोसी के दो फ्लैट, सारी खुशी गायब। उन्होंने कहा दूसरा मांग जल्दी जल्दी। आजकल कार मांगते हैं, बढ़िया से बढ़िया कार दे दो, ड्राइवर भी हो। तो कार खड़ी हो गई सामने, आके शोफर भी था, खुश हुआ। फिर उधर देखा पड़ोसी की दो कारें, सारी खुशी गायब। उसने कहा ये कैसा भगवान है, तपस्या मैंने की ये डबल पड़ोसी को दे रहा है। मैं भगवान को भी मजा चखाता हूँ और पड़ोसी को भी मजा चखाता हूँ। उन्होंने कहा मांग तीसरा वरदान क्या मांगता है? कहता है जी मेरी एक आंख फोड़ दो। अब बताइए ये हालत है। तो जो इस प्रकार की नेगेटिव हैप्पीनेस हम जिसको गिनते हैं आज, वो हमारे अंदर आ गई है। तो ये हल्केपन की निशानी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की चिंते ज्यादा कर रहे हैं, अपना ख्याल कम कर रहे हैं। आजकल क्या हो गया है, हम दूसरे के जज बन गए हैं। किसी ने हमें नहीं कहा जज की कोई अथॉरिटी, दूसरे के जज बन गए और अपने वकील बन गए हैं। अपने से कुछ नहीं होगा तो कहेंगे जी देखो हो नहीं सका, दूसरे से नहीं होगा इसने ऐसा क्यों नहीं किया या ये ऐसा क्यों करता है। तो सारी लाइफ हम प्रोफेशनली किसी हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे अंदर जैसे किसी के अंदर वायरस होता है या किसी सेब के अंदर कोई कीड़ा होता है वो लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए आप हल्के नहीं हो सकते। और यही चीज आप जीवन में पाएंगे। भगवान कहता है देखो मैं तुमको क्या ज्ञान देता हूं। अभी हम आए हैं यहाँ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर, हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में 45 मिनट्स के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल होता है, जिसमें 45 मिनट सहज सहज आसन लोगों को सिखाए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी भी उनसे ज्वाइन करती है, हम करते हैं। अब क्या ये वही योगा है जो गीता के भगवान ने सिखाया था या जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती है? इसमें बॉडी के पोस्चर्स हैं। अच्छा पहली बात तो यह है कि आप हेल्दी होंगे तभी आप योग कर सकते हैं। अगर आप वीक हैं, बीमार हैं, एजिड हैं या आप कोई किसी डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप तो वो कर ही नहीं सकते, वो तो योग से गए बेचारे। एक हेल्दी व्यक्ति हेल्थ को कायम रखने के लिए या और हेल्दी बनने के लिए योग कर रहा है। आप जितने सीन देखेंगे, मिलिट्री वाले कर रहे हैं, फलाना कश्मीर में कर रहा है, यंग पर्सन कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हेल्दी है। ये योग थोड़ी भगवान ने कहा था। अब गीता पढ़ेंगे तो पहला लेसन क्या है कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो, ठीक है। और ये बॉडी का योग सिखा रहे हैं। अच्छे भले भी हो जाए, कल एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी बॉडी किस काम की, तो वो योग तो गुम हो गया ना। इसी प्रकार से जो ओरिजिनल हमारी चीज है, भगवान ने ये कहा है तुम हो आत्मा। और जैसे एक बीज होता है, बीज के अंदर सब कुछ होता है, तो अगर हमारा शरीर भी छूट जाए तो हमारा कुछ नहीं जाता। शरीर तो हमें अपनी मर्जी से लिया नहीं, मिला हुआ है, अपनी मर्जी से छोड़ा नहीं, अगला भी मिल जाएगा, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब है, उसको तो हम देखते नहीं। तो हल्का होने के लिए पहली बात तो आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आत्मा के अंदर अगर किसी प्रकार का ऐसा ट्रेट है जो आपको बार बार उलझाता है, बार बार बंधन में लाता है, तो समझिए आप हल्के हो ही नहीं सकते। वरना बिजी रहना कोई खराब बात नहीं है। आपने सुना होगा, अगर किसी को सबसे बड़ी सजा देनी हो, आप उसको काम से हटा दो कि तू कुछ नहीं करना तेने, फिर देखो क्या होता। आप में से भी किसी से कोई कह जी ठीक है, आप बिजी है ना, बहुत तंग है बिजी रह के, तो आज आप कुछ ना करिए, यहां बैठ जाइए, क्या होगा आपको पता, थोड़ी देर के बाद अब बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। बिजी रहना तो बहुत अच्छा है। बिजी रहने वाले किराएदार से तो मालिक मकान भी देखता है, ये बिजी है, चिकता फिर आऊंगा। तो बिजी रहने वाले से तो बुराइयां भी देखती है, ये बिजी है, अभी फिर आऊंगा। तो बिजी रहना तो एक बहुत अच्छा तरीका है खराबियों से बचने का, और हम कहें हम बिजी ना रहे। हाँ, बिजी किस एटीट्यूड से हम रहते हैं उससे फर्क पड़ जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर साहब को शाम को एक अवार्ड मिलने वाला है, बहुत अच्छा अवार्ड मिलने वाला है, और डॉक्टर साहब के मन में आज मैं शाम को जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे ये अवार्ड मिलेगा, उसके मन में एक प्रसन्नता है। उस दिन भी वो पेशेंट्स को देखेंगे, उसी वही रूटीन फॉलो करेंगे, कुछ फर्क होगा या उसी तरह होगा? कहेंगे अरे मुझे अब उनका ध्यान है कि मुझे अवार्ड मिलना है, इसलिए उनको लगेगा ही नहीं कि मैंने कोई ये पेशेंट देखे, ध्यान वहां लगा हुआ। नॉर्मली भी कोई व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, उससे कोई टकरा जाता और कहता है सॉरी, तो क्या कहते हैं हम? अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई व्यक्ति बहुत उदास है, उसका जॉब छूट गया है या किसी ने उसका इंसल्ट कर दिया है, उससे कोई टकरा जाए और कहे सॉरी, तो फिर क्या बोलता है? इतना बड़ा दिन चढ़ा हुआ है, दिखता नहीं, अब फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब आप देखिए, आगे बेगर भी होता था तो कहता था जो दे जाए उसका भला, जो ना दे जाए उसका भला। आज के बेगर को आप ना दे के देखिए तो श्लोक पड़ेगा। इसलिए भगवान कहता है आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकले आए और कहे लॉटरी ऑफिस तो 8th फ्लोर पर है, लिफ्ट खराब है, घंटे बाद आ जाना, लिफ्ट ठीक हो जाएगी, वो क्या करेगा? चढ़ेगा कि नहीं 8th फ्लोर? उसको पता लगेगा कि मैंने 8 फ्लोर चढ़े क्यों? तो ह्यूमन सोल में इतनी पावर है, आप गौर से देखिए। कहते हैं कि एक विदेशी दिल्ली में आया और उसने कहा इंडिया को कोई ऑथेंटिक विलेज मुझे दिखाओ। एक तो गवर्नमेंट विलेज तैयार करती है ना टूरिस्ट के लिए, असली विलेज दिखाओ। वो बोले जी जरा दूर जाना पड़ेगा। वहां चला गया तो विलेज में तो आप जानते हैं पगडंडी वगैरह होती है। वहां गया तो जैसे विदेशी होते हैं अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। वहां गोबर के उपले लगे हुए थे, बोला गाय इस पर कैसे चढ़ गई, आप जानते हैं जैसा जैसा होता है, जलेबी देखी तो क्या इसमें शुगर कैसे इंजेक्ट हुई, करता रहा। थोड़ा लेट हो गया, अब उसको तो प्लेन पकड़ना था। ओह बोला मैं तो लेट हो गया, कोई शॉर्टकट है? उन्होंने कहा ये तो गांव है जी, यहाँ तो शॉर्टकट नहीं होता। फिर एक बच्चा खड़ा था, उसने कहा सर आप उस कुत्ते को पत्थर मार दीजिए, अब जल्दी पहुंच जाएंगे। अब आप बताइए होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपके आईसीयू में एक पेशेंट पड़ा है, हाय हाय कर रहा है, रिश्तेदार भी दूर से देखने को अलाउड है, और डॉक्टर खड़े हैं, मशीनें लगी हुई हैं। कोई कहते जी तेरे, और आईसीयू भी सेकंड फ्लोर पर है, कि तेरे बेड के नीचे टाइम बम है, वो आधे मिनट में फटने वाला है, वो डॉक्टर को धक्का देकर नीचे आ जाएगा। अब क्या हुआ जी बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अंदर की मन की जो शक्ति है वो अपने आप लेटेंट होती है। हम नॉर्मली सुबह मान लो 4 बजे आप उठते हैं, रात को आप 2 बजे तक कोई रिक्रिएटिव एक्टिविटी देखते रहे, कल्चरल प्रोग्राम देखते रहे, लोगों ने कहा भी कल जागना है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अब आप सुबह अपनी नेचर के हिसाब से 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी, फिर आपका मन कहे अरे तू तो 2 बजे सोया था, तू थका हुआ है। तो क्या हुआ? थॉट ही है ना। तो मानव की जो थॉट है वो दो तरीके से चलती है, या तो मजबूरी से और या मोहब्बत से। अब मुझे कोई कह दे तुझे बॉडी बहुत बड़ा ट्रबल है, शाम तक भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, तो मैं सब कुछ छोड़ के अपना प्रोग्राम कैंसिल करके मुझे डॉक्टर दिखेगा, हॉस्पिटल दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत खतरे की बात है। यह है मजबूरी। उसके बाद डॉक्टर ने देख लिया तो मेरा वो मन का टेंशन खत्म। एक होता है मोहब्बत, कि जिस चीज को आप लाइक करते हैं, जिस चीज में आपको फायदा है, वो आप वहां आप नेचुरली जाते हैं, बार बार जाते हैं। मान लीजिए आपने कल कोई अच्छा काम कर दिया, आपका फ्रेंड आके कहता भी कल तो तुमने कमाल कर दी, आप क्या करते हैं फिर? क्या कहा? मैंने सुना नहीं, फिर बताना क्यों? अच्छा लग रहा है, फिर से कहे। और कोई खराब बात कहे तो ऐसे लगेगा कान में गरम तेल डाल दिया और किसी ने दोबारा न बोले। तो कहने का भाव यह है कि काम व्यक्ति को नहीं थकाता, कितना भी व्यक्ति, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ह्यूमन माइंड में। और आप जानते हैं, आप डॉक्टर यहाँ आए हैं, मान लीजिए कोई तो अहमदाबाद से आए हैं या जयपुर से आए हैं, उनको तो लगेगा भाई यहाँ से अहमदाबाद जाना है, रास्ते में ये आएगा, मैसाना आएगा, जयपुर जाना है तो रास्ते में ये। अगर आप गुवाहाटी से आए हैं या बॉम्बे से, तो आपका थॉट एक्सटेंड हो जाएगा, आपको अहमदाबाद तो स्टॉप ओवर ही लगेगा। इसी प्रकार से कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती है तो छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, क्योंकि इतनी पावरफुल ट्रेन है और मेरे गांव में नहीं रुक सकती, इसलिए तो पावरफुल है कि रुकती नहीं यहाँ। तो नेचुरली व्यक्ति की प्रायोरिटीज भी होती हैं। तो कहने का भाव ये है आपके हाथ में है। एक बात और है जो ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है, हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ा मुक्ति मुक्ति को छोड़ दीजिए, इस जीवन का आपका लक्ष्य क्या है? शांति? क्यों जी, शांति वाले कितने हैं? शांति, अच्छा, शांति के अतिरिक्त किसी का और लक्ष्य हो? हाँ? खुशी, अच्छा जी, और कुछ? हाँ, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता, वाह, ये तो एक दो ही हैं। हाँ तो आपकी पार्टी नहीं बनेगी वोट। हाँ, हाँ जी, हाँ? सेवा, ये तो आप माहौल देख के कह रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो ठीक, चलो सेवा भी ठीक है। अच्छा, क्योंकि बाकी तो लेने वाली बातें हैं, ये देने वाली बात है कुछ, है ना, इसलिए मैंने पूछा, कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए, और भी जितने लक्ष्य आप सोच लीजिए, वो सारे के सारे स्पिरिचुअल होंगे, नॉन मटेरियल नॉन फिजिकल होंगे, है कि नहीं? चाहे वो शांति है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो संतुष्टता है, चाहे वो सेवा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी चीजें स्पिरिचुअल है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज और देखिए कि जितने आपने लक्ष्य कहे उसका ऑपोजिट भी है कि नहीं है? है? शांति का उल्टा है, सुख का उल्टा है, खुशी का उल्टा है, संतुष्टता का उल्टा है, सेवा का उल्टा है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका उल्टा नहीं होता, एंटोनिम होता ही नहीं? है जी, आनंद। ये कोई बीके बोल रहा है क्या? अच्छा, देखिए, आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा सत है, चित है और आनंद स्वरूप है, ठीक है। सत मैंने एवरलास्टिंग है, चित मैंने लाइव है, जिसके अंदर अनुभूति है, और आनंद स्वरूप इसका नेचुरल नेचर है। अब आनंद का एंटोनिम नहीं होता, समझे आप, जिसको हम ब्लिस कहते हैं। अच्छा, तो अगर हम उस स्टेट में आ जाएं, क्योंकि आप शांति ढूंढने गए, शांति ऑपोजिट उसका होगा जो आपकी नेचुरल और ओरिजिनल स्टेट है। जब हम उससे नीचे आ जाते हैं तो फिर हम खुशी ढूंढते हैं, फिर हम सुख ढूंढते हैं, और नीचे आ जाए तो शांति से ही काम चलाते हैं। आजकल तो शांति भी नहीं मिलती, शांति तो एक अजीब तरह की स्टेट है, ना इधर ना उधर, ना सुख ना दुख, जी शांति है। जैसे इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, शांति इमेजिनरी चीज है, और आजकल तो शांति में भी कोई नहीं रहता। हम यहाँ आ जाए भाषण करने, एक मिनट ना बोलें सिर्फ, तो आप देखिए क्या होता है, है? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बच्चे बैठते हैं, हम कहते शांत रहो, कोई शांत नहीं रहता, जरा सा कोई गाना लगा दो टीवी तो सब शांत हो जाते हैं। तो आजकल तो शांति इल्यूसिव है और हर साल थोड़ी दूर हो जाती है। इसलिए बेसिक बात यह है कि हमें अपने आनंद स्वरूप की स्थिति में रहना, जो मेरी नेचुरल है, और वो तब रहेगी, ब्लिस की स्टेट ब्लेसिंग से मिलती है और बैलेंस से मिलती है। अगर हम अपने जीवन में बैलेंस रखते हैं, आपने देखा ना, जो रस्सी पे चलता है, टाइट रोप बाकर होता है, तो लोग कहते अभी गिरा अभी गिरा, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो बैलेंस करना जानता है। दूसरे की आप सेवा करेंगे, आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी वो आपकी श्योर गारंटी है आपको खुश रखने, सुखी रखने की। और अपने जीवन में आप बैलेंस रखेंगे, किसी चीज की भी एक्सेस नहीं करेंगे, ये तो डॉक्टर लोग जानते ही हैं, तो भी आपको ब्लेसिंग ब्लिस मिलेगी। अच्छा, सवाल ये है ये क्यों नहीं होता, तो हम आपको बता दें, इजीएस्ट अगर जीवन में का लक्ष्य लिखा जाए डाउन टू अर्थ, वो होता है हैप्पीनेस, कहते हैं ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। फॉर्मूला क्या है कि पहले आपकी हेल्थ ठीक हो, फिर आपके पास वेल्थ आए, फिर आप हैप्पी होंगे। तो ना नौ मन तेल होता है और ना है उल्टा। ब्रह्मा कुमारीज में ये सिखाया जाता है, हैप्पीनेस से ही हेल्थ रहता है, हैप्पीनेस से ही वेल्थ रहता है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुराक मैंने डाइट, तो जो व्यक्ति खुश है आप जानते हैं वो बहुत थोड़ा खाता है, खुश व्यक्ति थोड़ा खाता है। किसी दिन आप को कोई तंग कर दे, टेंशन में आ जाए, या फेल हो जाए, या एक्साइट हो जाए, तो ज्यादा खाते हैं, क्यों? कि वो खुशी डिस्टर्ब्ड है। तो खुशी जैसी, जिसके पास खुशी है उसको कुछ नहीं कहे, खुश व्यक्ति को अरे भाई अरे अरे अरे, अरे, अरे करता, बहुत खुश रहता है, उसके हार्मोन भी ठीक रहते हैं। अच्छा, खुशी जैसा खजाना नहीं भी कहा जाता है तो वेल्थ भी हो गई। किसी के पास एंड प्रोडक्ट है, खुशी है, उसने वेल्थ क्या करना है? तो आप देखेंगे कि साधारण लोग भी बड़े खुश नजर आते हैं, और कई बड़े वेल्दी लोग भी ऐसे फील करते हैं पता नहीं क्या हो गया उनको। इसलिए ये बात भी इम्पोर्टेंट है। और हम ये भी बता दें, मनी इज नॉट द ओनली वेल्थ, मनी इज नॉट द ओनली वेल्थ। आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वेल्थ है समय। आज के जमाने में हम समय गवा रहे हैं और मनी को इकट्ठा कर रहे हैं। जब मनी आ जाएगा तो समय खत्म हो जाएगा। संकल्प, आपके थॉट की क्वालिटी, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। आपके गुण, गुड क्वालिटीज, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। आपकी आंतरिक मनोबल शक्तियां, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य गुण, दैवी शक्तियां और समय और संकल्प, ये वेल्थ है। अब हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। बड़ा आसान फार्मूला है, लेकिन अगर आपने उस फार्मूला पे चलना है बड़ा वैल्यूएबल भी है, तब हम आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। क्यों जी? हल्के रहने का नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा ठीक है, इधर से ज्यादा आवाज आई, आगे होकर नहीं आई। चाहिए, कहने की जरूरत नहीं, ऐसे कर दीजिए। बहुत अच्छा। पहले मैं उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। हमारे पूर्वज देवता कहलाते थे, थे क्या? नहीं। आज हम क्या हैं? उसको उल्टा कर लो। मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी 1956 में, तो हमें सिखाया गया कि जो आए वो लाभ है, जो जाए वो हानि है। अकाउंटेंसी का पहला प्रिंसिपल है, ऑल दैट कम्स इज इज गेन, ऑल दैट गोज आउट इज लॉस। ब्रह्मा कुमारी में मैंने आके देखा उल्टा है। अच्छा, आप देखिए, वो देवता कहलाते थे, तो देवता जो है, इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द यूनिवर्स। हर चीज दे रही है। ये पंखा क्या कर रहा है? खुद को तो नहीं दे रहा। ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है? आवाज को मैग्नीफाई, अपनी को तो नहीं कर रहा। ये कुर्सी आराम दे रही है, खुद को दे रही है, हमें दे रही है। तो एवरीथिंग गिव्स, अपने को नहीं देती बल्कि दूसरे को देती है। हमारे यहाँ कहा गया है, नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, मशहूर है। अच्छा, तो देने में खुशी है, तो फर्स्ट फार्मूला तो यह है, देने में खुशी है। एक राजा थे, वो 50 साल के हो गए, तो किसी साधु ने कहा, महाराज मरने के बाद किसने देखा है? अब जिंदा जी अपनी वेल्थ को पब्लिक में बांट दो, आपके पास तो बहुत धन है। उसने धन की थैलियां बना ली और अनाउंस कर दिया, 10 to 1 पब्लिक आए और थैली ले गए। वहां लाइन लग गई। उस लाइन के पीछे एक बैगर था, तो लाइन लगी, जब उसकी टर्न आई तो उसने थैली नहीं ली, छोड़ करके फिर लाइन में लग गया। उसकी तो बहुत पब्लिसिटी हो गई कि ऐसा फकीर है, घंटों खड़ा रहता है, जब टर्न आती है तो पीछे लग जाता है। राजा को बहुत जेलसी हुई कि थैलियां मैं बांट रहा हूं, तारीफ इसकी हो रही है। उसने उसको बुलाया कि भाई ये क्या नाटक करता है, 4 थैली ले ले, 5 ले ले, ये क्या करता? उसने कहा, हजूर मैं दूर से देखता था, जब आप थैली देते थे आपको खुशी होती थी, जब आप थैली देते थे आपको खुशी होती थी। मैंने सोचा देने में खुशी है, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अपनी टर्न दे देता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। अब आप सोचिए, तो अगर हम ये फार्मूला सोच लें कि सूर्य भी दे रहा है, चंद्रमा भी दे रहा है, पेड़ भी दे रहे हैं, कुर्सी भी दे रही है, तो अगर मैं देने वाली अप्रोच रख लूं, वो देवता वाली, तो तब मैं बेटर ऑफ रहूंगा या लेने वाली रखूंगा? ये फर्स्ट नंबर है। कि हमें देना है, हमें आप ही मिलेगा। नंबर टू कि इसमें भी आप सोचें मैंने अपने पैसा देना है या कंबल देना, नहीं, केवल शुभ भावना और शुभ कामना। कि हम वैसे हम भक्ति में कहते जीजा तेरा भी भला हो, प्राणियों का भला हो, फलाने, वो नहीं, नकली नहीं। हम एक ही चीज सोच लें, जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई उसका भाव अर्थ यही था, हर एक व्यक्ति मतलब दूसरे की कमजोरी को देख रहा है, उसकी बुराई को देख रहा है, उसकी कमी देखते देखते वो अपनी भी बुराइयां ही देखनी शुरू कर दी है। अगर हम मन को हेल्दी बनाना चाहते हैं और सदा खुश रहना चाहते हैं तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। गॉड की क्रिएशन है, तो गॉड की क्रिएशन में अगर किसी को तकलीफ है तो हमें उससे हमदर्दी होनी चाहिए ना। इसलिए एक शब्द है, सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखें, आप हमेशा हल्के रहेंगे। ना रहेंगे तो मेरा नाम ब्रिज मोहन नहीं है, ठीक है, ओके, ओम शांति, ओम शांति।
खुशियों भरी जिंदगी।